श्री राम का लंका, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना। श्री भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मर्षि, श्री रामचंद्र जी ने कन्याकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हे भगवान, श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ हैं। वे जब पृथ्वी का राज्य करते हैं उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते हैं। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न को उत्पन्न करती है। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः हे मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलत्स जी बोले, हे महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित कर रहने वाले रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वह एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस विषय का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किस प्रकार का विघ्न या बाधा न पड़े, इसलिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार का विचार कर रहे थे उसी समय भरत जी वहां पर आए और श्री राम को विचारमग्न देखकर बोले, हे देव, आप क्या सोच रहे हैं? यही यदि कोई बात गुप्त न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने के लिए योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन से इस विषय में बड़ी ही चिंता रहती है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा वर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए मैंने रावण का वध किया था। इसलिए हे वत्स, जहाँ विभीषण हैं वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े रहे भरत ने बोला, मैं भी स्वयं आपके साथ चलूँगा। श्री रघुनाथ जी बोले, हे महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर इन हम दोनों का लौटने की प्रतीक्षा करो। लक्ष्मण को इस प्रकार का आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के वहां आ जाने पर दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गंधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वह लक्ष्मण के पुत्रों से भी मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत कर दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके अत्रि मुनि के आश्रम पर वह गए। वहाँ अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, हे भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गृद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण कर लिया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला डाला था। मरते समय उसने बताया था कि सीता रावण के घर में है। उसने वह भी कहा था कि आप ऋष्यमुर्ग पर्वत पर जाएं, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। वहीं पर एक पंपा सरोवर है जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती है। वही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने वाली को मारा था। हे वीर, वाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसमें धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्य अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय पर अपने सभा में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में आ पहुँचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर श्री सुग्रीव ने उनके चरण में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरण में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परमात्मा रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और वृक्षराज, जांबवन आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां पर आए। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी वहां पर उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद करने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रु से गदगद होके उनको प्रणाम किया। सुग्रीव जी बोले, हे महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र ही बताएं हमें। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आपके दोनों के साथ राक्षसराज विभीषण को मिलने के लिए लंकापुरी चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो फिर। सुग्रीव, श्री राम और भरत तीनों पुष्पक विमान पर बैठे और तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर आ पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत जी से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने चार मंत्रियों के साथ अपने प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक आशा से ठहर रहा था कि मुझे दर्शन देगा। सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मैंने यह कार्य किया था, किंतु तब तक उसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े ही वेग से धनुष उठाकर दिव्यास्त्र लेकर समुद्र को धमकी दी। यह देखकर समुद्र बड़ा ही भयभीत हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत ही अनुनय विनय की और कहा, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बनाकर जल राशि से पूर्ण महासागर को पार कर लीजिए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह बड़ा ही महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिन में यह कार्य पूर्ण किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक उन्होंने पुल बांधा और तीसरे दिन 100 योजन तक का पुल पूर्ण कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत ही बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ गृहस्थ का वध किया था। इस स्थान पर हनुमान जी ने धूम्रक्ष को मार गिराया था। वहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट किया था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था और वहां मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी ने मुझसे वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर भी वहाँ पर आए थे। हमारे पिता महाराज दशरथ जी भी स्वर्गलोक से वहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान में अग्नि का प्रवेश किया था और सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता का स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, हे बेटा, अब अयोध्या वापस लौट जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस बात का वर्णन कर रहे थे तब पुष्पक विमान वहीं ठहरा हुआ था। उसी समय प्रधान राक्षस जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर हर्ष भरे निवेदन से बोले, हे राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी यहां पधारे हैं। उनके साथ 19 की आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप गए। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया। उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ कार्य भी पूर्ण करे। फिर लंकापुरी सजाने की आज्ञा देकर मंत्रियों के साथ वह बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम का विमान देखकर विभीषण ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं क्योंकि आप मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करने के बाद भरत और सुग्रीव से को भी वो गले मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्न से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान थे तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने के लिए योग्य वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान की ही त्रिलोकी के लिए कष्ट रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पूरी ही नहीं है, ये स्त्रियाँ, ये पुत्र और स्वयं मैं, यह सब भगवान की सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक लोग वहां पर आए और विभीषण से बोले, हे प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय करवाया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षसपतियों के द्वारा भेंट में दी गई धनराशि और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी 3 दिन तक उन्होंने निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकेयी ने विभीषण से कहा, हे बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी। तुम उन्हें सूचना दो, मैं महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरण लेंगे, वही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, हे माँ, तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यों कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ पर गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करने के बाद सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर रामचंद्र जी के सम्मुख जाके उन्होंने कहा, हे महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकेयी आपके चरणों का दर्शन चाहती है, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी माता है, मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूँगा, तुम मुझे शीघ्र ही उनके पास लेकर चलो, आप आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और राजा विभीषण के पीछे चल पड़े। कैकेयी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मित्र की माता होने के नाते आप धर्म तो मेरी माता है, जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी मेरी माता है। कैकेयी बोली, हे वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चीर काल तक जीवित रहो। मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप में अवतरित होंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बालिका वध और समुद्र पर पुल बांधने का आदि कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सीता लक्ष्मी है और तुम विष्णु हो और वानर देवता है। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश की प्राप्ति हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, हे भगवान, यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी ने देवी की मैंने पूरे एक वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा में सुखपूर्वक थी, परंतु मैं प्रतिदिन श्री सीता माता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका मुझे दर्शन मिलेगा। आप श्री जानकी नंदिनी को अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही। आपके निकट सीता शोभा पाती है और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार का की बात कर रही थी, उसी समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए और वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती है। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, हे कल्याणी, अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करने के बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, हे निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करने वाले हो और कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज के आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला जाए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वो वरम मेरी ही भांति उनका स्वागत और सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, हे महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था, आप उसे ले जाएं और कन्याकुब्ज देश में प्रस्थापित कीजिए। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जानकर विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, जिस प्रकार मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाए थे, हे देवादिदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और उनके पीछे असंख्य धन रत्न देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय राम ने विभीषण ने से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबका मैं पालन करूँगा, परंतु महाराज, इस सेतु मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ पर आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु के दो टुकड़े कर दिए, फिर तीन भाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव की स्थापना की और उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं यहीं पर स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा। श्री राम ने कहा, भक्तों का अभय देने वाले हे देवे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले हे गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही सर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप पशुओं, जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटा जूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबकम, त्रिनेत्र वाले कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताओं के नेत्र फोड़ने वाले और अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेदा, विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले और कुमार को जन्म देने वाले विलोहित धूम्र, शिव, क्रथन, नीलाशिखंड, शूलि, त्रिशूलधारी, दिव्यशायी और उग्र ने और त्रिनेत्र आदि नाम से प्रसिद्ध है। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसके चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी देवता, देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य और कामना करने योग्य और सद्योजात के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित है और जगत जटाधारी भी है। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप और विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप शरणागत का कष्ट दूर करने वाले हैं और भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले हैं तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव महादेव अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र सिंह जी से बोले, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष है। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है और अब उस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी भी होंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो भी अत्यंत घोर पाप है, वे सभी मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन जी की प्रतिष्ठा कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए। हे भगवान, आपको नमस्कार है। अपने परम धाम को पधारें। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता करो। श्री रघुनाथ जी के आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो वो क्या देखते हैं कि देवताओं सिद्ध सिद्ध और ब्रह्मर्षियों के समुदाय तथा चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान हैं। यह देखकर विमान में जाकर वह रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों वसुओं आदित्यों तथा मरुदगणों के साथ विराजमान हैं, इसलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघ कर नहीं जा सकता। तब श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान से नीचे उतरते हुए और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान श्री ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी प्रणत भाव से स्तुति की। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र है। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध है। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपका ही स्वरूप है। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले महायशस्वी भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा और सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले और सृष्टिकर्ता, जगतगुरु, अविकारी, कमंडलु धारण करने वाले देवता है। स्त्रुक, स्त्रुत्वा आदि धारण करने वाले, मृत्यु तथा अमृत स्वरूप, पारियात्र पर्वत रूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले और कमल पर वास करने वाले, षडविधि ऐश्वर्य से परिपूर्ण सावित्री के पति, अच्युत दानवों को वर देने वाले और विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनिस्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित और जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष और मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत भावन, रुक, साम और यजु, इन तीनों वेदों में वेदों को धारण करने वाले और उनके रूपों वाले, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, अज्ञानियों के विशेषतः दानवों के मोह और बंधन डालने वाले, देवताओं के लिए भी आराध्य देव और देवताओं से बढ़ चढ़कर कमल में चिन्हित जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के कार्य में पराक्रम करने वाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार की स्तुति की गई तब वो विनित भाव से खड़े हुए और श्री रामचंद्र के हाथ पकड़कर बोले, हे रघुनंदन, आप साक्षात ही श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आप मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे पर श्री वामन भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करके आप अयोध्यापुरी लौट जाए और वहाँ से अपने परम धाम सिधारें। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ित होकर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत ही संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देखकर उनके चरण में मस्तक नमाकर प्रणाम किया। उनके पांच अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को उठाकर छाती से लगा दिया। तदंतर भगवान और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने फूर्ति से अर्घ्य निवेदन करके सेना मंत्री आदि आठों अंगों से युक्त अपने राज्य को अपने चरण में अर्पित कर दिया, उनके चरण में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मण की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए वहां पर उपस्थित हुए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में निवास करने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस कर दिया है। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहाँ से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर वो आ पहुँचे। वहाँ भगवान वामन जी की प्रतिष्ठा स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इनका पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार की धर्म आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए और अब उन्होंने अपने लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं समझा। हे भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग में भगवान श्री वामन के प्रागट्य की वार्ता भी तुम्हें विस्तृत रूप से बताई है।